सेठ जी का बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है। बता रहे हैं कि निराकार से साकार भगवान कैसे प्रकट होते हैं। जैसे बटलोई में पानी रखा हो, देगची में पानी रखा हो और उसमें नीचे आग लगी हो, वो पानी भाप बनता है और फिर वो भाप से फिर वापस पानी बनता है। तो अब ये नहीं कह सकते कि निराकार से साकार होता है कि साकार से निराकार होता है, निराकार बड़ा है कि साकार बड़ा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। कहे कि साहब निराकार से साकार होता है तो साकार से निराकार भी तो होता है कि साकार से निराकार कैसे, कि भगवान हमारे को दर्शन देते हैं उसके बाद निराकार हो जाते हैं। तो ये कहें कि भाई साकार से निराकार होते कि नहीं कह सकते, क्योंकि निराकार है तब साकार होते हैं, दोनों में क्या कहें बता। यदि कहें कि निराकार से साकार होते हैं तो साकार के बाद फिर निराकार भी तो होते हैं। जैसे पानी से भाप पैदा होती है और भाप से फिर वापस पानी पैदा होता है, भगोनी के ऊपर जो है देगची के ऊपर थाली रख दो और नीचे पानी को गर्म करो, आंच लगी हुई हो तो वो जो पानी है जो गर्म हो रहा है उसकी भाप बनती है और ऊपर जो ढक्कन लग गया उस ढक्कन में पानी बनता है, वो ढक्कन में पानी पानी हो गया। तो पानी से भाप और भाप से पानी, तो पहले कौन और पीछे कौन कह नहीं सकते हैं। कोई ये मानता हो कि निराकार बड़े हैं तो अच्छी बात, परंतु उसको साकार को छोटा कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि साकार वाला साकार को बड़ा मानता है तो दूसरे के विश्वास को अपने विश्वास से छोटा बताना ये अपराध लगता है। का कोबड़ छोट कहता अपराध, इसलिए अपने तो भगवान निराकार भी वैसे ही है, साकार भी वैसे ही है, निर्गुण भी वैसे ही है और सगुण भी वैसे ही है। अपने तो ऐसा अनुभव करे कि सब जगह आनंद ही आनंद है। निराकार स्वरूप परमात्मा का सदा परिपूर्ण रहता है, निराकार साकार रूप में आते हैं। मन में सदा उम्मीद रखे कि भगवान जरूर प्रकट होंगे। देखो हम संसार पर कितना विश्वास रखते हैं, लोगों पर विश्वास करते हैं, वस्तु पर विश्वास करते हैं, न जाने कितनों पर विश्वास करते हैं, एक भगवान पर विश्वास नहीं करते। अनजान गांव में चले जाएं और अनजान वहां का नाई है, नहीं जानते हम उसको, कह दे भाई जहमत करना भाई, वो नाई है वो उस्तरा लेकर हिजामत करता है। हिजामत करते करते हमारी सांस की नली तो यही है ना, जरा सी उस सांस की नली पर ही लगा दे अपन तो मर जाए, पर अपने को विश्वास है कि नाई मारेगा नहीं। तो अनजानों पर विश्वास करते हैं। रेल यात्रा में टिकट देता है अनजान आदमी है, पर वो सरकार का टिकट देता है ना, टिकट पर विश्वास है, लेकिन शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। भगवान की वाणी है गीता, उस पर विश्वास नहीं करते, रामायण पर नहीं करते, भागवत पर नहीं करते, संतों की वाणी पर नहीं करते। उम्मीद रखे कि भगवान जरूर प्रकट होंगे और प्रतीक्षा करता रहे, हार नहीं माननी चाहिए भगवान के मिलने में, हार कभी नहीं माननी चाहिए, भगवान जरूर दर्शन देंगे। जैसे भरत जी, जैसे गोपियां भगवान के लिए व्याकुल रहते थे, भरत जी जब व्याकुल हो गए तो भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार एकांत में बैठकर भगवान से रोकर के प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं किसकी शरण में जाऊं, आपको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं, बताओ कौन सुनने वाला है, और सुनकर के भी कौन क्या करने वाला है, किसके पास ताकत है जो मेरा उद्धार कर दे। आप जैसी शक्ति नहीं, आप जैसा प्यार नहीं, किसकी शरण में जाऊं, मैं जानता भी तो कुछ भी नहीं हूं। हे नाथ, केवल आपका ही सहारा है। देखो, एक तो सुनी सुनाई प्रार्थना करते हैं, एक संत की प्रार्थना कितनी गहरी है। केवल आपका ही सहारा है, आप में दया नहीं होती तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता था। आपकी आपके अंदर दया है, उसी बात पर विश्वास करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मुझे मालूम है मैं कैसा हूं, ये तो मुझे मालूम है, परंतु आप दयालु हैं, मेरी कमी को देखने वाले नहीं है, इसलिए आपको छोड़कर कहां जाऊं, आपके सिवाय मेरा कोई आधार नहीं है। ऐसी बात भगवान से कहे, और जैसे डूबता आदमी बोलता ही रहता है, बचाओ 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 बचाओ, वो बोलते थकता नहीं, जितनी देर तक बोल सकता है। वैसे इस संसार सागर में अपने को यूं डूबता हुआ मानो, और ये देखो कि भगवान मेरे पास ही खड़े हैं और ये बचा सकते हैं, तो उनके राम 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 ऐसे समझ उनका नाम ले हो। प्रेम में मगन होकर भगवान का नाम ले हो, कीर्तन करो, उनका आह्वान करो, बुलाओ उनको, हे भगवान आओ। देखो अपने तो सीधे राम 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 करते हैं, ये भी करते हैं, अच्छी बात है, अंदर से व्याकुल होकर के हे महाराज, हे भगवान बचाओ हमको, बचाओ संसार में डूब रहे हमको, बचाओ बचाओ, ऐसा व्याकुल हो, उनका ऐसे स्तवन करे, इतना व्याकुल हो, इतना व्यावल हो, इतना विवल हो, घबरा जाए कि बस अब इनके बिना मेरे प्राण रहेंगे नहीं। जैसे मछली है वो जल के बिना नहीं रह सकती है, तड़पते वे को हे भगवान क्यों देरी करते हो, हे प्रभु मेरे अपराधों को मत देखो, आप मेरे अपराधों को बिल्कुल मत देखो, आप तो अपनी दया की ओर देखो, प्रकट हो जाओ, विलंब मत करो। जैसे भरत जी महाराज भगवान श्री राम के लिए व्याकुल हो रहे थे, जो करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, 100 करोड़ों जन्मों तक मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरा पाप देखोगे तुम तो ये दशा है, बंद करो महाराज जी, मेरे पाप देखना बंद करो, आप अपनी दयालुता पर ही विचार करो। मेरी तरफ देखना ही छोड़ो, पापों की तरफ, मेरी तरफ का मेरे पापों की तरफ देखना बंद करो। हे नाथ, मेरे दुराचारों की तरफ देखोगे तो कहीं निस्तार नहीं है। भरत जी कहते हैं मेरा 100 करोड़ जन्मों में भी उद्धार नहीं हो सकता, तो हे प्रभु आपका काम मेरे अवगुण मेरे पाप देखने का थोड़ा ही है। मेरे पाप मेरे अवगुण तो यमराज जी देखेंगे, आप थोड़ी देखोगे। आप तो प्रेम भरी दृष्टि से देखो अपना, दया भरी दृष्टि से। जड़ अवगुण प्रभु मानन का हो, आपको आकर के कोई शिकायत भी करे, हे भगवान ये आपका भगत है ना, किसी काम का नहीं है, ऐसा आके आप भगत शीतल रहते हैं। कोई कहे कि ये भगत आपका खराब, ये भगत खराब, आपका हृदय इतना स्वच्छ है कि किसी खराबी को सुनता भी नहीं और पकड़ता भी नहीं है। देखो कोई आदमी किसी की खराबी बताता है तो उसको वो ही पकड़ता है कि जिसका हृदय खराब हो, खराबी में खराबी पकड़ी जाएगी। अब देखो ये प्लास्टिक है, इसके साथ में ये लोहा भी लगा हुआ है, ये सफेद सफेद लोहा है। अभी आप चुंबक लाओ, चुंबक ला करके और ये प्लास्टिक है इसके लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुंबक इस प्लास्टिक को नहीं पकड़ेगा और ये लोहा है यूं कर दिया, अब यहां चुंबक लगाओ वो खिंच जाएगा। तो चुंबक ने पकड़ा तो क्या पकड़ा, लोहे को पकड़ा, प्लास्टिक को नहीं पकड़ता, लेकिन प्लास्टिक इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी खिंच गया। इसी प्रकार से कोई आदमी किसी की बुराई करता है और वो बुराई हमारे हृदय में आती है, इसका मतलब हमारे हृदय में कोई बुराई है, बुराई ने बुराई को पकड़ लिया। और जिसके हृदय में बुराई नहीं है ना, उसको आप जाकर के बोल दो, उसका हृदय पकड़ता नहीं है, पकड़ता नहीं है। खूब भरोसा रखे मन में, भगवान पर भरोसा रखे, भगवान जरूर मिलेंगे। और आनंद शब्द का उच्चारण करते रहे, आनंद 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 ऐसे बोलता रहे। और ऐसा समझे कि मैं तो आनंद में ही डूबा हुआ हूं, जैसे पानी के अंदर ऊपर ऊपर पानी, पैर के नीचे पानी, दाएं पानी बाएं पानी, आगे पानी पीछे पानी, पानी ही पानी है वहां। ऐसे सोचे कि मैं आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद में ही डूबा, आनंद ही आनंद, आनंद आनंद आनंद। कैसी भी परिस्थिति आए वो परिस्थिति आनंद से खाली नहीं है। शरीर में भयंकर पीड़ा है पर उस पीड़ा के अंदर भी आनंद है। ये पीड़ा में क्या आनंद हो कि पीड़ा है वो पाप ने नष्ट करे, पुराने पापा ने नष्ट करे। तो जो पाप ने नष्ट करे आपा ने शुद्ध बढ़ावे वह आनंदित है। ऐसो आनंद देखे। अब देखो बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बात वो ही लिख सके है, कह सके साक्षात भगवान रा दर्शन करीड़ा वे वो ही आ बात लिख सके, कह सके। ओह कैसा प्रकाश, कैसी चेतनता, बाहर भीतर भगवान का स्वरूप व्यापक हो रहा है। बाढ़ आ गई बाढ़, भगवान अनंत है, भगवान चिन्मय, चिन्मय माने ज्ञानमय। कैसा प्रभु का अलौकिक स्वरूप है, जब भगवान का स्वरूप प्रकट होता है तो चंद्रमा की भांति शीतल नेत्र बंद करने पर भी प्रतीत होता है। भगवान का जो स्वरूप है इतना ठंडक देने वाला, नेत्रों के अंदर जो है ठंडक शीतलता आती है बंद करने पर भी। आहा, भगवान प्रकाश रूप में आए, भगवान प्रकाश पुंज बनकर के प्रकट हुए, कितना मधुर प्रकाश है। हे प्रभु आप क्यों विलंब करते हैं? हे भगवान मैं आपसे एक बात पूछता हूं। हे भगवान मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने मुझे भुला दिया। भरत जी कहते कारण कमर नाथ नहीं आए, जान कुटिल किदु मोहि बिसराए। क्यों नहीं आ रहे भगवान, मुझे कुटिल जान करके आप रुक गए, मुझे कुटिल जानकर त्याग दिया। ओ इसी कारण से आप प्रकट नहीं होते हैं। पर दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, आप अपने चरणों में गिरे हुए आदमी के दोष पाप देखते भी तो नहीं है। आपका वो स्वभाव कहां चला गया? इतना कोमल स्वभाव है। ऐसा विचार करके भगवान के सामने खूब गंभीर हो जाए। और विश्वास रखे कि अवश्य आएंगे। मोरे मन भरोस दृढ़ सोई, मिले ही राम शकुन अस होई। भरत जी के ये वचन याद रखो, मेरे मन में विश्वास है भगवान मुझे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्या मेरे में भक्ति ज्यादा है? क्या मेरे में गुण ज्यादा है? क्या मेरे में विशेषता है? ना ना ना, ये कुछ नहीं है मेरे। क्योंकि वे बड़े दयालु है ना, वो दयालु है इसलिए मिलेंगे। मेरे पास कोई विशेषता नहीं है, उनकी दयालुता पर विश्वास करके रोमांचित हो जाए। और थोड़ी देर के लिए आप समझ लिए कि भगवान नहीं आए, तो कहीं भगवान पर अविश्वास मत करना। वहां ये सोचना कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। हे भगवान, जैसे भरत जी के पास एक पुकार थी कि 14 बरस की अवधि के बाद यदि आप आएंगे तो मेरा तो प्राण निकल जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, फिर आप आए तो फिर मेरे को फायदा भी क्या हुआ। ऐसे ही ये मानव शरीर मेरा चला भी गया तो फिर उसके बाद तो मिलना होगा नहीं। हे प्रभु मैं आपका वियोग नहीं सह सकता हूं। देखो बहुत बढ़िया बात है, यदि आपके वियोग में मेरा प्राण नहीं निकला, आपके वियोग में मैं छटपटाया नहीं, तो ये मेरा सब कहना एक ढोंग है, ढोंग। जब भरत जी महाराज ऐसे बोलने लगे ना, तब हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए। जैसे डूबते आदमी को नौका मिलती हो, इसलिए खूब बिलाप करके रोना चाहिए। आप क्यों नहीं आते हो, आप तो पतित पावन हो, आप दुखहारी हो, तो मेरा दुख आप समझते नहीं। देखो, हम संसार के दुखों को दूर करने के लिए भगवान से बोलते हैं, और वो दुख है नहीं, हम मान लिए तो क्या करें। बताया ना कि जैसे बच्चा है, वो रात में किसी पेड़ को देख करके कटे हुए पेड़ को भूत मान ले, भूत है। ऐसे संसार में दुख है नहीं, हम दुख मान लेते हैं, उसका क्या करें। आप तो पतित पावन है, दुख आ रही है, क्या मेरा दुख नहीं समझते हैं। फिर भी यदि आप नहीं मिलते हैं तो मेरा क्या बस चल सकता है, आप पर कोई मेरा बस तो चल सकता नहीं। मोसे दास बहुत जग माही, मेरे जैसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप जैसे आप ही हो। श्री हरिराम दास जी महाराज की बाणी में आता है कि हे प्रभु, हमसे तेरा बहुत है, तुमसे मेरा ना है, हमारे जैसे तो तेरे बहुत मिलेंगे, सभी मिलेंगे सभी। लेकिन सोचो भगवान की, मेरे लिए आपके अलावा कौन है, मेरे लिए तो केवल आप एक ही होना। हमसे तेरा बहुत है, तुमसे मेरा ना है, हे नाथ मेरे जैसे तो बहुत है, आपके समान तो मेरे लिए आप ही है। ऐसे गदगद वाणी में, विरह में व्याकुल होकर, दोषों को याद कर करके, अपने लिए धिक्कार देकर, कातर भाव से रुदन करें कि मैं कैसा हूं, अभी तक भगवान नहीं आए, मेरी कमी है, भगवान की कमी नहीं है। वह यह समझे, ओह अब भगवान प्रकट हो गए आकाश में, देखो आकाश की दशा बदल गई, दर्शन देते हमारी दशा बदल गई। ऐसे ध्यान में हो, और फिर वही आनंद आनंद आनंद। जैसे कहा गया कि नाथ सकल साधन कर ही ना, कीनी कृपा जान जन दीना। हाँ, मैं तो सब साधनों से रहित हूं, मेरा मुझे अपना मान के आपने दर्शन दिया है। ये ध्यानावस्था में भगवान के दर्शन करो, तो ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे ध्यान से ध्यान लगा है मेरा, ऐसा नहीं। मेरे ध्यान में भी भगवान की कृपा से ही ये स्वरूप प्रकट हुआ है। ध्यान अवस्था में प्राय हम लोग यह मानते हैं कि मैं ध्यान करता हूं, सेठ जी कहते हैं कि ऐसा न मानकर ये मानना चाहिए कि भगवान ध्यान में प्रकट हो गए वो कृपा करके। फिर कभी कभी ध्यान में भी न दिखे तो के महाराज अभी आए, लुप्त क्यों हो गए, क्या बात है। ध्यान अवस्था में भगवान से यह भी कहें कि वाह प्रभु, ध्यान अवस्था में दर्शन दिया, यही यदि रूप आंख खोलने पर ही दिखने लगे तो हे भगवान, सब आपकी स्तुति करेंगे, नास्तिकता का जग ही बदल जाएगा। फिर क्यों नहीं आते। जसेड़ी में हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को भगवान ने दर्शन दिए, जसेड़ी में ले गए सेठ जी एक बार सबको, तो वहां एकांत स्थान में बैठे हो, सबको बताया यहाँ ध्यान करो। तो पहले तो एक मकान में गए, सुनो मकान हो बो, एकदम सुनियाड़ भी मकान में कोई रहता को नहीं है, सेठ जी सब जा रहे बैठे, सेठ जी क्या अठे मारे ध्यान लागे को नहीं, वो मकान कोई अच्छो को नहीं, मालूम करे जना पतो चले कि मकान में प्रेत रहता है। पहले सेठ जी वो मकान छोड़ और दूसरी जगह पर गया, दूसरी जगह पर जा बैठा, बैठे भी जच्चो को नहीं, तीन चार जगह फेरी में भी मकाई हो कि सुबह भोजन वगैरह कर करा, सेठ जी आदत भोजन कर सोने री ही को नहीं, मना ही करता है दिन में नहीं सोनो। तो कोई आठ नौ बजे इधर भाई जी आया और साथ में दो तीन जना और सत्संग गया बे आर सेठ जी कियो। फिर सेठ जी ऐसे मन में आवे आपका न बैठ में भगवान रो ध्यान करा, बहुत जोर से मन में आई भाई जी कहते कहते रोवन लग गया। तो भाई सेठ जी बोलिया कि देख हनुमान कोई मालूम कर सा, कोई चौकी जगह मालूम कर सा। फिर करके अच्छा ठीक है, फिर भोजन वोजन कर करा लिया, बीर बात कोई 11 बजे 12 बजे समय रो ध्यान नहीं है, चलो बापा ध्यान करने वास्ते चला। सब जना रवाना है, पर तो वो मकान देखे वो मकान चौक एक दो, फिर एक खुली जगह ही जंगल टाइप बड़े जा रहे, बड़ो अच्छो वृक्ष हो गिर नीचे बैठे, अठे शांति बैठ जाओ ध्यान करने बैठ जाए। सेठ जी वर्णन करे करते 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 भाई जी रे अश्रुपात हुए, भाई जी रे मुंडा सो बड़े, हे भगवान कैसा पावन दर्शन हुआ है, हे भगवान सबने दर्शन दे दो। भाई जी बोले आप जो अबार माने दर्शन दिया हो सबने दर्शन दे दो। जना भगवान बोलिया कि जय दयाल कह देवे तो दर्शन दे दो, जय दयाल कह देवे तो सबने दर्शन दे दो। तो भाई जी क्यों के सेठ जी भगवान ने कह दो दर्शन देवे कि नहीं, भगवान की मर्जी पर ही राणो, भगवान के ऊपर सदा भगवान री मर्जी पर ही राख लो, भगवान ने यदि गरज हुए दर्शन देने री तो भगवान दर्शन देओ, मैं मारे मुंडा सु भगवान ने किया कहवा कि थे दर्शन देओ, मैं भगवान ने केवड़िया कुड़ा भगवान ने मैं कहीं कह सका के भगवान री जू मर्जी वेज। इतना सेठ जी निष्कम ने देखो भगवान ने वास्ते ही लाया बैठे ध्यान कराने वास्ते, दर्शन देने की बात नहीं भाई, बात हो वागी दर्शन भी हो गया सब हुआ। बाद में लोग पूछा कि सेठ जी थे, कह देता तो मानी दर्शन हो जाता। सेठ जी किया कि देखो मैं यदि भगवान ने कह दे तो और थाने दर्शन यदि हो भी जाता तो आज चीज बढ़िया नहीं है, थे भजन साधन ने छोड़ देता और थारे समान दूसरा लोग भी मन कहता कि माने क्यों थे भगवान ने दर्शन कराओ दर्शन, तो भगवान मेरा नौकर है के मैं भगवान ने जा जा कह तो फिरूं थे यान दर्शन दे हो, थे यान दर्शन दे हो, क्यों मैं भगवान रो मालिक हूं के। सेठ जी बोले भगवान रा दर्शनारो लाभ साधन भजन कर जो दर्शन हुए भी में है, कोई रकेलवाने सुन नहीं हुए। तो आप तो दया सिंधु हो फिर आप देरी क्यों करो, ऐसे भगवान रा दर्शन करें। अब देखो अब घड़ी का नहीं मत देखो भाई, बहुत बढ़िया बात है, आपा खास जी उद्देश्य से वास्ते है ना, बात चीज देखो प्रभु का स्वरूप आकाश में चमक चमक रिया है, भगवान का स्वरूप कैसा है कि नीले रंग में है और भी रामायण में सफेदी मिलोड़ी है। सफेद रे साथ में, सफेद रे साथ में जो चमक है बातो है, वो जो प्रकाश है वो सफेदी रूप प्रकाश है। नील है वह उनका खुद का स्वरूप है। नीलिमा और सफेदी दोनों मिलोड़ी है। ध्यान से सुनो, प्रभु के स्वरूप में नीलिमा की जो झलक है, चमक है और प्रकाश होने से सफेदी है, ऐसा प्रभु का स्वरूप है। प्रभु का जो ये स्वरूप है, ये 16 बरस के राजकुमार के समान है। लंबाई कोई 5 फुट भी है, चरणा से लेकर आकाश तक खड़ा है। अब देखो 5 फुट भी बतावे और आकाश तक खड़ा है, माना अपनी दृष्टि इतनी मत करो, अपने इतनी राखो, बस 5 फुट बाद आकाश ही है। अलौकिक स्वरूप है, चम चम चमक रहा है और श्याम रंग की घटा चमक रही है। प्रभु का ऐसा स्वरूप है। भगवान आकाश में खड़े हैं, टेढ़े पग से खड़े हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं, मुख जिनका चम चम चमकता है। अब उनकी उम्र करीब 12 बरस की है, लेकिन 16 बरस के माफिक लगते हैं। माफिक माने तरह, 16 बरस की तरह लगते हैं। सारा शरीर दमक रहा है, चरण तो बड़े चिकने हैं, स्पर्श करने से रोमांच होता है। भगवान के नाखून की चमक बहुत है, ऐसे उनके गोड़े हैं, ऐसी उनकी जंगा है। पीतांबर से सारा शरीर चमक रहा है, तागड़ी पहने हैं, तागड़िया कमर में, नाभि जिनकी बड़ी गहरी है, गंभीर है, भुजा जिनकी ऊपर उठी हुई है, दोनों हाथ से बंसी थामे हुए हैं, जिनके चरण हाथ बंसी मुकुट ये सब स्वभाव से टेढ़ा है, जामा पहने हुए हैं, जामा कहीं हुए ऊपर तो भगवान राख्या कुट करे, माला वैजयंती रत्नों की है, स्वर्ण स्वर्णों के गहने हैं, चंद्रहार पहन रखा है, हाथ में अंगूठी कड़े आदि पहन रखे हैं, भुजा बड़ी विशाल है, आकर्षक है, अलौकिक स्वरूप है। छाती जिनकी चौड़ी है और उसके ऊपर के स्थान में भृगुजी की लात का चिन्ह है, ग्रीवा जिनकी लंबी है, ग्रीवा माने गर्दन, गर्दन जिनकी लंबी है, नासिका जिनकी सुंदर है, मुखारविंद गोल है, मुखारविंद गोल है और उसमें प्रेम टपक रहा है, जैसे कोई रत्न, जैसे कोई ब्रह्मचारी का चेहरा चमकता है, उससे भी 1000 गुणी चमक है। कानों के बीच में कुंडल धारण कर रखे हैं, गले के बीच में एक हार है और उसमें एक पुष्पों का हार है, ऐसे भगवान के नेत्र कमल के, ऐसे भगवान के नेत्र कमल के पत्र के माफिक खिले हुए हैं। जैसे पुष्प खिलता है ऐसे वे खिले हुए हैं। ये आकर्षण करने वाला प्रकाश है। इस प्रकाश में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है और इस प्रकाश में प्रेम का प्रवाह बह रहा है। भगवान के नेत्रों से आनंद का स्रोत बह रहा है और उनके नेत्रों से शांति की बाढ़ आ रही है। उनके नेत्रों में दया भरी हुई है, इसलिए वे दया के सागर है, क्षमा की मूर्ति है। ये बताया भगवान का तीन अंगारा विशेष ध्यान करना, एक चरण और एक भगवान का होठ मुखारविंद और एक नेत्रारविंद, तीन का विशेष ध्यान करना चाहिए। चरणारो ध्यान करते करते मन कटी चले गयो तो अठे हंसते हुए भगवान रो ध्यान करना, फिर कटी मन चलो गयो तो नेत्राकारी ध्यान करो। नेत्र मुख चरण, चरण मुख नेत्र, तीन का विशेष ध्यान करने की बात आवे। और देखो सेठ जी तो सबरी बात कहवे, क्षमा की मूर्ति है, आनंद रूप है, ज्ञान के पुंज है, क्या कहा जाए, कितनी कहूं, अनंत गुण है। सारी दुनिया के गुण, दुनिया भर के सारे गुण इस गुण सागर के एक बूंद के समान भी नहीं हो सकते। संसार में सबकी दया इकट्ठी कर ले, सबकी क्षमा, सबको स्वभाव, अच्छो स्वभाव इकट्ठो करे तो भगवान के अंदर जो अच्छाई भी एक बूंद भी नहीं है, ऐसा अलौकिक उनका प्रभाव है। मस्तक पर काले रंग के बादल है और छल्लेदार बाल है, घुंघरालू बाल है, छल्लेदार बाल है, मोर का मुकुट है, मोती और चिरमिया गुथे हुए हैं और मुकुट भी चमक रहा है। अब देखो सेठ जी वास्तव कितने, फिर कह मुखारविंद गोल है, अब आर कह रहा है प्रकाश की छटा छाई हुई है, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो इनसे जा रहा है। यदादित्य गतम तेज जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। वास्तव में ये बात बिल्कुल सच्ची है। मंद मंद हंस रहे हैं और दांतों की पंक्ति मोती के समान है, बंसी की ध्वनि बड़ी मधुर है, ऐसे भगवान को देखता हूं तो ऐसा मालूम होता है मानो मैं अमृत का पान कर रहा हूं। बहुत ही सुंदर है, उनमें जादू भरा हुआ है। टकटकी लगाकर देखता हूं, पलक भी पड़ती नहीं है। ये जो प्रभु के दर्शन से रस है इसी को आनंद कहते हैं, दिव्य होने से इसको अलौकिक कहते हैं। मंद मंद हंस रहे हैं, अलौकिक गंध आ रही है, अपार दया है, अपार प्रेम, अपार क्षमा, किसकी उपमा दी जाए, उपमा है ही नहीं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। अरे उनको आए बहुत देर हो गई और मैंने उनकी पूजा नहीं की, अब उनकी पूजा करनी चाहिए। दाहिनी तरफ चौकी पर दिव्य सामग्री पूजा के लिए मंगाई हुई है, मानो देवताओं ने लाकर ही रख दी है। ऐसे सब ध्यान में देखे, चारों तरफ से सब देवता उनके रूप को देख रहे हैं। वृक्ष भी देख देख करके हंसते हुए से मालूम देते हैं क्या अलौकिक बंसी बजा रहे हैं। उनके पास उनके प्यारे सखा भी खड़े हैं और वे जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं कदम का अद्भुत वृक्ष है। अरे पीछे उनके आगे पीछे गाय भी बंसी सुनकर के अपना ही मुंह ऊंचा किए। गाय को जो बहुत खुशी होती है ना, यूं मुंह ऊंचा कर खाज के लिए और के लिए ऊंचा। गाय भी अब अमृतमयी बंसी की धुन को सुन रहे हैं। उनकी गति देखकर मनुष्य मुग्ध हो जाता है। बाणी में अद्भुत कोमलता है। ओ अब मैं पूजा करता हूं। बहुत से सोने के गिलास जल से भरे हुए हैं। एक कटोरे से उनके चरणों के ऊपर जल डालता हूं, एक से धोता हूं। ओम पादयोः पादयेम समर्पयामि। लिखनो को दिया यार। नारायणाय नमः। आहा वासुदेव है, केशव है। इस प्रकार बार बार नमस्कार करके जल डाल रहा हूं। अपने हाथों को धोकर दूसरे कटोरे से दूसरे कटोरे को हाथ में लेकर उनके हाथ पर डाल रहा हूं। ओम हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस प्रकार कहकर मैं प्रभु को नमस्कार करता हूं। फिर उनको आचमन कराता हूं। वे दाहिने हाथ से आचमन कर रहे हैं। ओम आचमनीयम समर्पयामि नारायणाय नमः। तीन बार वे आचमन करते हैं। प्रभु की अलौकिक मूर्ति है। सारा प्रभु का तेज और प्रकाश मानो अक्स पड़ रहा है। अब छोटी सी कटोरी में बहुत प्रकार की गंध मिली हुई है, जिनको बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से मस्तक पर तिलक कर रहा हूं। गंधम समर्पयामि। एक कटोरी में मुक्ता फल है, वे लेकर मुक्त फल उनके मस्तक पर चिपकाता हूं। बहुत बढ़िया है।